ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन नंद गोपा कुमाराय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपी का कांत राधा कांत तप्ता राधे वृषभानो सुत देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। क्वेश्चन
हरे कृष्ण बापूजी, जब कोई जयपुर या और कहीं से भी कृष्ण की ठाकुर जी की मूर्ति लेने जाते हैं तो वहां पे हजारों मूर्तियां देखते हैं और उनमें से देख देख के कोई एक होती है जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो बापूजी एक्चुअली क्या है, हम कृष्ण को सिलेक्ट करते हैं या कृष्ण हमको सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को इसके साथ जाना है?
पहले कृष्ण हमें सिलेक्ट करते हैं तभी तो जयपुर जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे? जब भी हमें अपने घर परिवार में भगवान श्री हरि कृष्ण की विग्रह को विराजमान करने का मन हो तब समझ लेना उसने हमें सिलेक्ट किया है कि तुम मेरी स्थापना करो, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है, आज तक ऐसा ही हुआ है। अभी हमारे यहां भारत में अभी जगह भूल गया हूं, अभी ये पांच साल पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं। एक व्यक्ति था, उसको बार बार सपने में आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर में हूं, मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो, लेकिन वह सपना ही समझता रहा। फिर कुछ समय के बाद फिर सपना आया कि मैं यहां पर हूं, मुझे निकालो निकालो निकालो, और उसने कैमरों की मौजूदगी में खोदना चालू किया तो थोड़ी देर खोदने के बाद उसमें से भगवान की, ये अभी भी जाओ यूट्यूब पे है ये बात, ये है यूट्यूब पे, जाके देख लो। इसका मतलब ये है कि भगवान हमें चुनते हैं कि चलो मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूं, तो पहले वो हमें चुनते हैं फिर हम मूर्ति चुनते हैं। चूंकि चाहे छोटी बड़ी 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 कुछ भी हो, लेकिन यदि हमारे मन में स्थापना करने का मन हुआ, विचार हुआ, तो मतलब उसने हमें चुना है, चलो अब मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, तब हमारा मन चाहता है कि चलो जयपुर जाए, वृंदावन जाए या कहीं भी जाए और भगवान की विग्रह को लेकर आए। अब कौन सी हम चुनते हैं, वहां तो बहुत सारी होती है। बहुत सारी मूर्तियां देखते 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 किसी एक पे हम रुक जाते हैं और कहते ये दे दो, अर्थात वहां हम क्यों रुक जाते कि यही चाहिए? क्योंकि जो हमारे मन में भाव है उस भाव की तीव्रता उस विग्रह ने कर दी, ये चाहिए, मतलब जो हमारा भाव था वो और प्रकट हुआ और हम उसको लेकर जाते और लेकर जाते फिर लालन पोलन पूजा सब करते हैं। इसलिए पहले कृष्ण हमें चुनते हैं कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, तो बोला जाओ जयपुर जाओ, जाओ इधर जाओ, जाओ उधर जाओ, और जाके मेरी विग्रह लो। अब कौन सी लो जो हमारे भाव को ज्यादा तीव्र करती है, वाह लेके चलो। तो हम जाके मूर्ति नहीं लेते हैं, पहले भगवान ने हमें ले लिया है, आई समझ। इसलिए जिसको भी मन हो कि हमारे घर में भगवान की स्थापना करे, मतलब भगवान ने उसके घर चलने का, न केवल चलने का बल्कि उसके साथ घर में रहने का मन बना लिया। अब इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपके घर में भगवान विराजमान है, चाहे वो छोटी विग्रह या बड़ी विग्रह है, कृपया उसका अच्छे से ध्यान रखिए, सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि वो खुद मुंह चलकर आपके घर आए हैं, तभी तो आपको प्रेरणा हुई स्थापना करने की। अब उन्होंने तो अपना काम कर लिया कि चलो मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, तो आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न कि हम शुरू शुरू में तो सोडे के गैस की तरह बहुत उछलते हैं। क्या आज हमारे घर में भगवान की स्थापना है, बहुत सारे वैष्णवों को बुलाएंगे, भक्तों को बुलाएंगे, कीर्तन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, बड़ा सारा हम श्रृंगार करेंगे और आहिस्ता 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 किसी और के हवाले करते हैं। जबकि भगवान आए हैं मेरे लिए और मैंने किसी और के हवाले कर दिया, तो कृष्ण सोचते होंगे ना। जैसे एक उदाहरण बात कहूं कि एक स्त्री संसारिक एक लड़की किसी एक लड़के के लिए आती है, और अगर वो लड़का उस लड़की को अपने ही साथ रखे तो कैसा होगा, वो लड़की हमेशा खुश रहेगी, लेकिन वो लड़का उस लड़की को कुछ समय तो अपने साथ रखे फिर किसी और को दे दे तो लड़की दुखी हो जाएगी। ऐसे ठाकुर भी ऐसे होते आते हैं हमारे लिए, तभी तो हमें प्रेरणा होती है, फिर हम कुछ समय तो रखते हैं, फिर कहते अब उससे सेवा नहीं हो पाती है तो फिर हम किसी और को दे देते हैं। जबकि 80 times दूसरे काम हमसे हो पाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना हमसे खाया जाता है, ऐसे नहीं कहते तू मेरे बदले खा ले, नहाया हम जिस जाता है हम नहीं कहते तू ना ले, सोया हमसे जाता है हम नहीं कहते तू सो ले, नौकरी धंधा बिजनेस हमसे जाया जाता है, सब काम हम करते हैं लेकिन कहते हैं ठाकुर सेवा मुझसे नहीं हो रही तुम कर लो प्लीज। और उस समय कृष्ण बड़े दुखी होते हैं कि आया मैं इसके लिए और इसने मुझे किसी और के हवाले कर दिया। इसलिए आप अपने ठाकुरों की बहुत अच्छे से सेवा करो जो आप कर सकते हो। इसलिए आप कृष्ण को नहीं चुनते, कृष्ण आपको चुनते कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तब आपको प्रेरणा होती है और फिर जो मूर्ति आपके भाव को तीव्र कर देती है उसी को आप लेकर आते हैं। जैसे ये कांच के ग्लास जब हम लेने जाते हैं तो वहां होते तो सभी ग्लास ही होते हैं ना, होते तो सभी ग्लास होते, लेकिन जो हमारे विजन को क्लियर कर दे हम कहते ये चाहिए, ऐसे हमारे भाव को जो क्लियर करते हैं, बोलते हाँ हाँ यही चाहिए, है तो सभी मूर्ति, ठीक है। और कुछ?
हरे कृष्णा बापू जी, जब भक्तिपाद जी फिजिकली प्रेजेंट थे तब उनके मुखारविंद से जो कथा कृष्ण कथा कहते थे आप एज अ शिष्य सुनते थे, अब भक्तिपाद जी फिजिकली नहीं है और आप एज अ गुरु उनके ही श्रवण जो आप कथा पहले करते थे अभी वो कथा हमको सुनाते हैं, तो आपको ज्यादा आनंद कब आता था, पहले सुनते थे तब या अब सुनाते हो तब? कथा वही कृष्ण की भक्तिपाद के मुख वाली है।
मैं सही कहूं मुझे सुनने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि उसकी दो वजह थी, उसकी दो वजह थी, एक तो मेरे गुरुदेव सुनाते थे और क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन करना होता था इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुनता था कि एक शब्द कहीं मिस ना हो जाए, तो मेरा पूरा मेडिटेशन उनके तरफ रहता था, पूरा पूरा मेडिटेशन मेरा उन्हीं की तरफ रहता था। तो दो चीज हो जाती थी, एक तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों को बहुत ध्यान से सुनता था और एट ए टाइम मेरे दर्शन भी पूरे भाव से हो जाते थे। अब क्या होता है, पहले शब्द भी मेरे गुरुदेव के थे और दर्शन भी मेरे गुरुदेव का ध्यान से होता था, पूरे फोकस के साथ। आप देखते होंगे मैं उधर ही देख के सुनता था और फिर बोलता था। अब शब्द तो मेरे गुरुदेव के हैं लेकिन दर्शन आप सबों के हैं, बस ये थोड़ा फर्क जी। इसलिए सुनने एज ए शिष्य, देखो हमेशा एज ए सन पैसे खर्च करने में मजा आता है कि नहीं, एज ए फादर पैसे खर्च करो मत पता चलता, ऐसे शिष्य जो सुनने का आनंद था वो कुछ अलग ही था, लेकिन इसमें भी आनंद है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो ज्यादा या ये ज्यादा, हरी कथा तो हरी कथा हाँ, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज को फिजिकली बहुत ज्यादा मिस करता हूं, क्योंकि उस समय मुझे हर्ष होता था, ऐसे मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, जो गुरुदेव के साथ समय बीतता है वो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा लिखन वाले तू हो के दया लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दो, बस ये होना चाहिए, क्योंकि अब ये जगह हमेशा मेरे लिए, खैर वो बाबा बैठ गए हैं उस जगह पर, वो ही जगह एग्जैक्ट, बस फर्क ये है कि मैं ऊपर बैठा हूं और वहां मैं नीचे बैठता था, और भक्ति बात को भी मैं बाबा ही बोलता था, हम सब मैं भक्ति योग महाराज मेरे गुरु के साथ जो मेरा समय गुजरा है उसमें जो आनंद था वो आनंद अब कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, ये पक्की बात है। वो आनंद एक दो चीजें होती थी, आनंद तो था ही लेकिन साथ में हर्ष और उल्लास भी होता था। हर्ष हालांकि मैं ज्यादा समय उनके साथ नहीं रहता था, उनको अपने जो जैसे मूड में रहते थे वैसे रहता था, क्योंकि मेरे जाने से थोड़े वो कॉन्शियस हो जाते थे। जैसे बड़ा बेटा कभी घर में आता है ऐसे, लेकिन मैं कोशिश करता था उनके दर्शन हो गए फिर वो जैसे मौज में रहते थे वैसे ही उनको रहने देता था, लेकिन जो उनके साथ समय बीता वो आनंद अब नहीं आ रहा, ये पक्की बात है, फैक्ट यही है। क्योंकि जो मैंने अपने गुरुदेव के साथ रहकर एक खुशी एक आनंद एक उमंग एक उत्साह का अनुभव किया, और मैं बड़ा खुश रहता था उनके साथ, बड़ा खुश रहता था उनके साथ, वो खुशी अब कहीं भी नहीं है जी। और कोई प्रश्न? इसलिए उस समय खुशी थी अब जिम्मेदारी है जी।
हरे कृष्ण माधुरी धलीला दासी का प्रणाम बापू जी। जैसे अभी आपने समझाया कि ठाकुर जी हमें सेलेक्ट करते हैं और वही विग्रह हमारे घर में आती है और हमें ही सेवा करनी चाहिए, तो बापू जी कभी कभी जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट, हम वर्किंग भी होते हैं, घर भी होता है, बाहर की भी प्रचार की सेवा होती है, तो जिस तरह से सेवा होनी चाहिए काफी सेवाएं मिस भी हो जाती हैं, तो फिर वो चल जाता है।
देखो जहां तक घर के ठाकुर का संबंध है, तो क्योंकि वो ठाकुर ही घर के हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये तो घर के लोग हैं, तो ठाकुर ही घर के हैं, तो घर की पूजा अर्चना में बहुत सारे कंसेशन हमें, जैसे समय है, अगर आप अपने घर में ठाकुर की 4 बजे पूजा नहीं कर पाते हैं घर गृहस्थी के कारण, तो ठीक है आप जितने बजे, इसका मतलब नहीं 12 बजे, आप जितने बजे उठ सकते हो, भोग की टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होती जैसे हमारे ये मंदिर में है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां आप ठाकुर के साथ कर सकते हो और वो आपको कंसेशन देते हैं, क्योंकि घर और मंदिर दोनों की ठाकुरों की पूजा पद्धति में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जी हो गया, वो पीछे जाओ।
हरे कृष्णा बापू जी आपके चरणों में प्रणाम। बापू जी कल आपने बताया था कि भगवान खुद जो जिसकी पूजा करते हैं तो उनकी पूजा को वो दृढ़ करते हैं, लेकिन अगर प्रचार करके हम उनकी पूजा को इस तरफ लाते हैं तो वो सही है कि गलत है?
मतलब कहना ये चाह रही हो कि कल जैसे मैंने कहा था गीता के 7वें अध्याय का रेफरेंस देके कि मैं अंतर्यामी परमात्मा होने के नाते जो जिसकी पूजा करना चाहते हैं मैं उसकी भावना को उस पे ही दृढ़ करना कर देता हूं, और कोई मेरी तरफ आना चाहते हैं तो मैं उसे स्वीकार मद्याजी मद भक्त मद्याजी, ये जो गीता में श्लोक तो लिखा है, यही जीव की बदनसीबी है, यही जीव की बदनसीबी है कि कृष्ण को ये स्वयं करना पड़े कि भाई ठीक है तू उसकी पूजा करना चाहता है ना जा कर, लेकिन फिर उसका रिजल्ट भी तुझी को भोगना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी कोई भी नहीं है। पक्की बात, जैसे एक ट्यूशन सर, अगर हम उसके पास पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उस पे, लेकिन हम किसी और क्लासेस में पढ़ते हैं तो फिर उस पे हमारी कोई, इसी तरह से हम किसी भी देवी देवता अन्य एक्स वाई जेड कि यदि हम पूजा करना चाहते हैं आराधना करना चाहते हैं तो भगवान आदि पुरुष और वो कहते हैं तुझे उसकी करनी है तो जा उसकी कर, क्योंकि हमारा सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें हरेक को स्वतंत्रता है, हरेक को किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं। दूसरे धर्मों में यदि आप उस धर्म को छोड़ दोगे तो वो समझते ये धर्म से अब निकल गया, लेकिन सनातन धर्म आपको फिर भी स्वीकार करता है, फिर भी स्वीकार करता है। समझ में आई? इसलिए अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो भगवान तो उसके अंतरात्मा में परमात्मा है, उसकी श्रद्धा वो वहीं दृढ़ कर देता है, फिर रिजल्ट भी उसी को भोगने। और क्या रिजल्ट है? यान्ति देववर्ता देवी जया, जो देवी देवताओं की पूजा करता है रोका नहीं गया है, निषिद्ध नहीं किया गया है, बुरा भला भी नहीं कहा गया है, यही तो गीता की खूबी है। बल्कि ये कहा है ठीक है तुम्हें देवी देवता की पूजा करनी है तो करो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है कि यदि तुमने उस देवी देवता की बहुत अच्छी पूजा की और उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली तो तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम उसी देवी देवता के पास जाओगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। यदि तुम किसी पितृ की पूजा करते हो तो रोका नहीं गया है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने धर्म ग्रंथ को समझा ही नहीं, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रह गए। झाड़ू ऐसे रखो तो कर्जा उतर जाएगा, गेहूं खिला दो तो बच्चा हो जाएगा, बिली पत्र चढ़ा दो तो बच्चे पास हो जाएंगे, और अपनी दुकान चमकाने में ही लगे रहे। तो आज ये हालत है, तो ना समझाने वालों को धर्म के संचार में कोई रुचि, ना समझने वालों। सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज के बीच जो जुड़ा हुआ था वो कथा थी। वहां पर सुखदेव महाराज, जबकि सुनने वाला कौन था? राजा परीक्षित, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, हीरे मोती जवाहरात की। लेकिन राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज ने नहीं कहा कि भाई सात दिन की भागवत करवानी है। बोला हाँ महाराज, तो भाई 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। तो फिर सुखदेव महाराज कहते 500 देनी? तो परीक्षित कहते देखो महाराज, वैसे ही मुझे सात दिन का श्राप लगा, मैं परेशान हूं, सब घर बार तो छोड़ दिया, थोड़ा कम कर लो। ऐसा हुआ था क्या? वहां तो कुछ भी नहीं था। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, जहां धर्म धंधा बन गया वहां मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। बात पक्की मान लो, बात पक्की मान लो, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इसलिए ये चीजें कौन समझाए? आई समझ? मेरी बातें थोड़ी अटपटी हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो है, वास्तविकता है वो तो है ही। तो आज हमारा धर्म किस तरह दिशा पे जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहली जो बेस है, बेस वो है भगवत गीता, जो बेस है। हालांकि कहने को एबीसीडी 1 2 3 4 है, लेकिन जब तक ये ठीक से समझ नहीं आए आप पीएचडी भी नहीं कर पाओगे। मानते? इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच, भगवान का गीत, भगवत गीता का मतलब ही है भगवान का गीत, जो भगवान ने कहा, बस उसको समझ लो, कुछ और समझने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? एको शास्त्रम देवकी पुत्रो गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ने के योग्य है और वो देवकी के बेटे का गीत अर्थात भगवत गीता है। इसलिए प्लीज इधर उधर कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने के कहीं नहीं रोका, ना मैं रोकता हूं ना कोई रोकेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा वो गीता में कृष्ण ने बता दिया। अब अगर वो रिजल्ट आपको स्वीकार है तो भले आप कीजिए, नहीं तो हम तो ये कहते हैं कि समस्त देवी देवता ही क्यों, समस्त ऋषिगण क्यों, समस्त संत साधु मुनि क्यों, हमारे लिए तो समस्त प्राणी प्रणाम के योग्य है। हम समस्त देवताओं की बहुत मान मर्यादा करते हैं क्योंकि मेरे हरि के प्यारे हैं, समस्त देवताओं का हम मान सम्मान करते हैं और वो हमारे लिए सम्मान्य है, एक तरह से हमारे लिए पूजन्य है, रिस्पेक्टफुल है वो, लेकिन हमारा आराध्य राधा वृंदावन चंद्र, हमारा आराध्य श्री बांके बिहारी, हमारा आराध्य श्री राधा वल्लभ, हमारा आराध्य गोविंद के अतिरिक्त कोई हो सकता नहीं है जी। और कुछ
हरे कृष्ण बापू जी, अगर अगर लोग जब यमुना में जाकर अपने पाप धोते हैं तो फिर यमुना पापी होगी ना, तो फिर वो पापों का क्या होता है?
तो सुनो, गोदावरी के किनारे संत एकनाथ जी महाराज का आश्रम, संत एकनाथ जी, और जब मैं संतों का नाम लेता हूं तो नाम लेते एक पवित्रता का एहसास होने लगता है मुझे। जैसे गर्मी के अंदर किसी झरने का एहसास करो तो एहसास करते ही शीतलता आने लगती है। ऐसे ये महापुरुष होते हैं जो गर्मी में छांव होते हैं, क्या बोला, गर्मी में छांव होते हैं और रहने को पूरा गांव होते हैं, सब उसमें रह सकता है। गर्मी में छांव होते हैं, रहने का पूरा गांव होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं। मैं आज भी जब अपने गुरु महाराज के लिए सोचता हूं तो वो एक बहुत करुणामयी आंखें, मुझे ऐसे लगता है कि वो है एक ऐसी प्रेम भरी मुस्कुराहट जिसमें करुणा कृपा, वो शब्द वो हमेशा मुझे बहुत कानों को भले लगते हैं, लेकिन अब मैं ढूंढूं तो भी जिंदगी में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, गए फिर नहीं आते। इसलिए जब तक उस मकाम पर हम हैं बहुत सारी अच्छी यादें बना लेनी चाहिए, क्योंकि फिर सिर्फ यादें ही हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि जब मेरे गुरुदेव थे तो मुझे वो समझ नहीं पड़ता था, मुझे लगा ये कहीं जाएंगे थोड़ी, वो तो मेरे साथ है, और मैंने टेकन टू ग्रांट ले लिया। अब पता पड़ता है कि अरे सोचता हूं ऐसा होता वैसे होता, ये करता वो करता, ये करता ऐसा करता, अब क्या करता, जिंदगी में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, फिर नहीं आते। तो संत एकनाथ जी महाराज गोदावरी के किनारे अपनी थोड़ा दूर कथा करते थे, समझो बेटा, जब वो कथा करते तो बहुत सारे लोग उनकी कथा में श्रवण करने सुनने के लिए आते थे। जब सुनने के लिए आते थे, देखो हमारे पास लोग तो सुनने के लिए आएंगे, लेकिन ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है कि हम उनको क्या सुनाते हैं, ये हमारा विवेक है। तो एक बिल्कुल युवा लड़की, जैसे हमारे यहां बहुत सारी बच्चियां बैठी है, ऐसी युवती, एक यंग गर्ल, यंग लड़की, रोज उस कथा में आती और सबसे आगे आके बैठ जाती, पूरे ध्यान से संत एकनाथ जी महाराज की कथा सुनती और उस समय उसकी आंखें भी झपकती नहीं। एक दिन क्या हुआ कि कुछ चार पांच मन चले उठाई गिरे बदमाश टाइप के लोग उस सत्संग में आ गए। देखो ये तो हरि का दरबार है, बहुत सारे लोग आते हैं। अब कुछ बिहारी जी के मंदिर में जेब काटने जाते हैं, तभी तो कहना पड़ता जेब पत्रों से होशियार। तो फिर एक लड़की आती बैठती तो उठाई गिरे इसलिए आए कि सोचे कुछ यहां से किसी का पैसा सोना चांदी खर्च हो जाए। देखा तो इतनी सुंदर यंग लड़की सत्संग में बैठी, पागल हो गए। और जैसे सत्संग पूरी हुई वो चारों लड़के उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े और उसको छेड़ने लगे, कहने लगे अरे तुम इतनी सुंदर हो, वो संत में रखा क्या है, देखो हम कितने जवान है, हैंडसम है, ऐसे वैसे। उसको तंग करने लगे, रोज वहां जाती हूं वहां क्या मिलेगा तुम्हें, आओ जिंदगी के हम तुम्हें मजे कराते, पता नहीं क्या क्या ऐसी बकवास बातें करते रहे। लेकिन लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे इसे लगता है कि लड़की होना उस युग में और आज के युग में दोनों युग में मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और लड़का होना उस युग में और आज युग में लड़कियों के मुकाबले आसान है, वो कभी बताऊंगा। अब वो लड़की को बहुत तंग कर रहे थे कि अचानक क्या आ गई, गोदावरी नदी आई और लड़की उस नदी में कूद गई, लड़की उस नदी में कूद गई। इन्होंने सोचा अरे इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, अब भागो, किसी ने देख लिया होगा तो इसकी मृत्यु की जिम्मेदारी हम पे आएगी, भाग जाओ। भाग गए, लेकिन रात भर उनको पश्चाताप रहा कि वो लड़की हमारे कारण आत्महत्या कर ली, उसी मृत्यु का कारण हम हैं। तो चलो आज जाके पश्चाताप करके आते हैं और उस हिसाब से कल वो फिर उसी एकनाथ जी महाराज की सत्संग में आए तो देखा वो लड़की जहां बैठी थी वहीं आज बैठी हुई। ये चारों लड़की को देख के दंग, अरे आपस में बात करने लगे ये भूत तो नहीं हुई है कहीं, क्योंकि कल तो हमारे सामने सुसाइड किया। अब वो लड़के डरे, ऐसे में पहली बार संत एकनाथ जी महाराज ने अपनी आंख उठा के उस लड़की को देखा, सुनो बेटा आप। और लड़की को देखकर कहने लगे मां, सारे चौंक गए कि संत एकनाथ जी महाराज किसी युवती को क्या कह रहे हैं, मां कह रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो स्त्री इस संसार की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री है जिसका पुत्र कोई महापुरुष है। वो स्त्री इस दुनिया की सबसे बड़ी भाग्यशाली स्त्री है जिसके कोख से किसी महापुरुष संत ने जन्म लिया है। हम कितने अजीब लोग हैं कि खुद का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, अपने बेटे को कभी संत नहीं बनने पड़ेंगे, बल्कि अपना बेटा यदि सत्संग में थोड़ा सीरियस भी हो जाए तो उसे मना कर देंगे, मत जाओ ऐसे नहीं तुम हमारे हाथ से ही निकल जाओ और साधु बन जाओ। लेकिन याद रखना हर एक के नसीब में थोड़ी होता साधु बनना। अपना बेटा साधु बने हम उसके कहे रुक पढ़ाई पे ध्यान दे, डॉक्टर बनना है तुझे, इंजीनियर बनना है तुझे, साइंटिस्ट बनना है, अपने बेटे को रोकेंगे लेकिन खुद किसी के बेटे के पांव छुएंगे, क्योंकि आज जो हमारे गुरु संत है वो भी तो किसी के बेटे हैं। वहां जाके पांव छू के आएंगे, उसकी फोटो घर में लगा के पूजा करेंगे, लेकिन अपने बेटे को कभी साधु संत नहीं बनने देंगे। कितनी पागलपन है। वो भूल गई है कि जैसे आज मैं किसी और माँ के पुत्र की पूजा करके आई हूं, मेरा बेटा यदि संत बना तो दुनिया उसकी पूजा करेगी। आज जैसे मैं इस आस्था से गई हूं कि ये महापुरुष मेरा उद्धार करेगा, जब मेरा पुत्र बनेगा तो कितने लाखों का उद्धार करेगा, ये उस समझ ही नहीं आती। या मेरी बेटी पता नहीं लाखों का उद्धार करेगी, समझ ही नहीं। तो संत ने कहा, मां गोदावरी, सब चौंक गए कि ये जो आगे बैठती है ये तो स्वयं मां गोदावरी। सबों की आंखें खुल गई कि ये लड़की कन्या नहीं है बल्कि ये तो साक्षात माता गोदावरी यहां आई हुई है। तब संत एकनाथ ने कहा, मां आप रोज सत्संग में क्यों आती हो? ये तो सब आते हैं, मुझे समझ में आता है, लेकिन आप तो पतित पावनी हो, जीवों का उद्धार कल्याण करके महापापियों का भी उद्धार कर देती हूं, फिर आप कथा में क्यों आती हो? तब मां गोदावरी ने हंस के कहा कि प्रभु, हजारों लाखों लोग स्नान करके अपना पाप मुझ पे छोड़ के जाते हैं, अपना पाप मुझ पे छोड़ के जाते हैं, अपने कुकर्म मुझ पे छोड़ के जाते हैं, अपनी कालख मुझ पे छोड़ के जाते हैं, और जब मैं देखती हूं कि अब मामला भारी हो गया है ये सारे पाप, तब मैं सत्संग में आती हूं क्योंकि हरि कथा मेरे पाप भी धो देती है। ये है हरि कथा जो दूसरों के पाप धोते हैं, लेकिन वो पाप धोते 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 जब वो सफोकेटेड होते हैं तो हरि कथा में आते हैं, क्योंकि हरि कथा जो पवित्र करने वाले हैं उनको भी पवित्र करती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, ये है हरि कथा का पुण्य कि सबको, पतित को भी पावन करती और पावन को भी महापावन करती है। ये है हरि कथा। नित्य भजो कृष्ण हरे हरे राम राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय